फिर छात्र नमस्कार। बात चल रही थी क्रिया की। जैसा कि कल अपन ने चर्चा की थी कि क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है करना, जिसे संस्कृत भाषा में धातु कहते हैं, और उन्हीं धातु के पीछे ना जोड़ देने से हिंदी में वही शब्द क्रियापद बन जाता है। और इस प्रकार क्रिया की परिभाषा में आपने यही देखा कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, अर्थात जहाँ कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसे क्रिया कहते हैं। उसके बाद में आपने ये देखा कि क्रिया के भेद या प्रकार, और उसमें भी कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, और तीसरा जो क्रिया के भेद का आधार है वो है काल के आधार पर क्रिया के भेद। तो सबसे पहला बिंदु है, और वही आपके बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और उनसे संबंधित ही बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला जो क्रिया के भेद का आधार है वो है कर्म के आधार पर क्रिया है, वो दो प्रकार की होती है। नंबर एक अकर्मक क्रिया और नंबर दो सकर्मक क्रिया। अकर्मक यानी नहीं, कर्म यानी कर्म, जिसमें कर्म नहीं होता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्म पर न पड़कर सीधे कर्ता पर पड़ता है, क्योंकि उस वाक्य में कर्म होता ही नहीं, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात वह क्रिया जिसमें क्रिया का प्रभाव या फल सीधे कर्ता पर पड़ता है और उसमें कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आशा गाती है एक वाक्य है, तो आशा कर्ता है, गाती क्रिया है। अब इसमें कर्म का अभाव है। गाती है के साथ क्या शब्द जोड़कर प्रश्न बनाए तो इसका उत्तर नहीं आता है, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे गाती है, क्या गाती है, इस वाक्य से हमें कोई पता नहीं चलता है। तो मोहन सोता है, रमेश खाता है, तो इस प्रकार जिसमें कर्म न हो तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है, या यूँ कहें जिसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश पढ़ता है, अब क्या पढ़ता है कोई उत्तर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो ये तो हुई अकर्मक क्रिया की बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण क्रिया है कर्म के आधार पर वो है सकर्मक। स यानी साथ में, अर्थात उसमें कर्म अनिवार्य रूप से होता है। वह क्रिया जिसमें क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता को छोड़कर सीधे कर्म पर पड़े तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, अर्थात वह क्रिया जिसमें क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर न पड़कर सीधे कर्म पर पड़े तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है, ये एक वाक्य है। अब बच्चा चित्र बना रहा है तो क्या बना रहा है, कि चित्र बना रहा है। अब क्रिया के साथ क्या जोड़ने से उत्तर मिल रहा है, तो इसका मतलब इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। गीता सितार बजा रही है, तो गीता क्या बजा रही है, सितार बजा रही है, तो इस प्रकार सितार कर्म है, चित्र कर्म है। यानी जिस वाक्य में कर्म मौजूद हो तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है, और जिस वाक्य में कर्म मौजूद न हो तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। बोर्ड में कभी कभार प्रश्न आता है कि अकर्मक और सकर्मक में क्या अंतर है, तो इस प्रकार आप दोनों की परिभाषा लिखकर अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। यानी जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल सीधे कर्ता पर पड़ता है तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है, और सकर्मक में वह क्रिया जिसमें क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर न पड़कर सीधे कर्म पर पड़ता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। फिर सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। नंबर एक, एक कर्मक क्रिया, और नंबर दो, द्व्यू कर्मक क्रिया। अब इन शब्दों से ही पता लगता है कि एक कर्मक यानी जिसमें एक कर्म हो तो वहाँ एक कर्मक क्रिया होती है, द्व्यू कर्मक यानी जिसमें दो कर्म मौजूद हो, यानी वे वाक्य जिसमें दो कर्म हो। तो नंबर एक, एक कर्मक क्रिया यानी सकर्मक का पहला भाग, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ अखबार पढ़ रही है, या इस वाक्य में माँ के द्वारा एक ही कर्म, अब इस वाक्य में कर्म क्या है, कर्म है पढ़ना, तो एक ही कर्म हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें एक कर्मक क्रिया है। नंबर दो, द्व्यू कर्मक क्रिया, जिस क्रिया में या जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो उसे द्व्यू कर्म क्रिया कहते हैं। जैसे कंप्यूटर किसे सिखा रहे हो छात्रों को, तो इस प्रकार इस वाक्य में दो कर्म एक साथ घटित हो रहे हैं, यानी छात्रों को और छात्र सीख रहे हैं। तो ये तो हुई आपकी कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। यानी कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती हैं, अकर्मक और सकर्मक। और फिर सकर्मक क्रिया है उसके दो उपभेद होते हैं, नंबर एक, एक कर्मक, और नंबर दो, द्व्यू कर्मक। इसी के साथ ये आज का कर्म के आधार पर क्रिया का बिंदु समाप्त। धन्यवाद।